मुने विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी ग्रंथ के नवम प्रकरण ध्यान दीप प्रकरण का चिंतन चल रहा है, जिसके 28वें श्लोक तक कल हम लोगों ने विचार किया था। बैठो, मैं आराम से बैठो। उपास्तीनाम अनुष्ठानम आर्ष ग्रंथेषु वर्णितम विचार अक्षममर्त्यः तत्श्रुत्वा उपास्ते गुरोः। ये बात 28वें श्लोक में कही गई थी। क्या कहा? कि कर्म और उपासना जो है उसमें मीमांसा की जरूरत नहीं है, विचार की जरूरत नहीं है, है थोड़ा बहुत पर उतना नहीं है जितना ज्ञान में है। कारण कहते हैं कर्म उपासना आदि का जो अनुष्ठान है आर्ष ग्रंथेषु वर्णितम्, आर्ष ग्रंथों में उसका वर्णन है। कल्पसूत्र, गृह सूत्र आदि जो कर्मकांडात्मक है, जैमिनी आदि ऋषियों द्वारा प्रणीत जो ग्रंथ हैं, उनमें उनका सारा सारांश निचोड़ निकाल करके बता दिया गया कि इस कर्म को ऐसे करो तो इसका फल ये प्राप्त होगा। अब वो समान प्रकार के जो कर्म हैं, अगर शास्त्र से देखने लगो तो विस्तृत ग्रंथों में कहीं कुछ अलग ढंग से उसका वर्णन है, तो अन्यत्र कुछ दूसरे ढंग से वर्णन है। अब व्यक्ति उसके ऊहापोह में ही लगा रह जाएगा कि ऐसे करूं कि वैसे करूं, वहां लिखा वैसा करूं कि यहां लिखा ऐसा करूं। अरे भाई, ये सारा जो निर्णय करने का काम हमारे मनुष्यों ने किया है, ऋषियों ने किया है, जैमिनी आदि महापुरुषों ने किया है, तो उन्होंने जो कल्प सूत्रों में निर्धारण कर दिया है उसके अनुसार जो आर्ष ग्रंथ है उसमें वर्णित किया है उसके अनुसार उसको अनुष्ठान को किया जा सकता है। विचार अक्षमम मर्त्यः, इसलिए जो विचार करने में अक्षम है, समर्थ नहीं है, ऐसा जो पुरुष है, मनुष्य है, गुरोः श्रुत्वा उपासते, गुरु से श्रवण करके उपासना कर लेते हैं। अब पंडित जी आचार्य जी पूजा करवाने के लिए बैठते हैं और हर बात में ही यदि यजमान तर्क करने लग जावे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, बहुत बात ऐसी होती है जो हमारी समझ से बाहर होती है। कल परसों बता रहा था, अब सुपारी को उठा करके रख दिया, कहा यह गणेश जी महाराज है। अब यजमान यदि वहीं तर्क करना शुरू कर दे कि गणेश जी कैसे हुए बताओ, शालिग्राम में विष्णु की पूजा बता दिया, तर्क करना शुरू कर दे कि विष्णु कैसे हैं, तो वहां यह नहीं चलता है, वहां पर विश्वास करना पड़ता है और विश्वास करके ही उसकी उपासना की जाती है। इसलिए कर्म में उपासना में तर्क गौण होता है, वहां श्रद्धा विश्वास प्रधान होता है, मानना पड़ता है, गुरु ने आचार्य ने बताया उसके अनुसार कर लेना चाहिए। ये बात जब इस श्लोक में आई तो अगले श्लोक की अवतरणिका में लिखते हैं, ऐसा ही यदि है तरही तो तदानीम तनैरपि ग्रंथकर्तृ भी वेदवाक्य विचार है कुतः क्रियते इति आशंक्य स्वस्व बुद्धि परितोषाय एव क्रियते न अनुष्ठान सिद्धयतिया है। कहते हैं कि यदि ऐसा ही है तो फिर ग्रंथकर्त्री भी वेद वाक्य विचार कुतः क्रियते, अन्य कई जो विद्वान लोग होते हैं ग्रंथ करने वाले, वेद वाक्यों से उसका विचार किया गया है। अब जो आर्ष पुरुष हैं जिन्होंने उन ग्रंथों में, आर्ष ग्रंथों में आप तो पुरुषों ने जो उसका वर्णन किया वो तो विचार के बिना थोड़े कर दिया, उन्होंने तो विचार ही किया था। और आज भी बहुत लोग हैं जो कर्मकांड के संबंध में ही अपना चिंतन करते हैं, अपना विचार करते हैं, ज्ञान रखते हैं। यदि सारा क्यों क्यों यह प्रश्न का कहे कि नहीं चुप बोलो मत, मैं कहूं वैसा कर लो, मैं कहूं वैसा कर लो, और ये रहस्य कोई नहीं जानेंगे तो धीरे 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 फिर ये तो एक अंधानुकरण हो जाएगा, फिर उस पर लोग आक्षेप करने लगेंगे आपके पास जवाब क्या होगा। तो बोले नहीं, उसका इसका अर्थ ये नहीं कि विचार करना ही नहीं चाहिए, ऐसा तात्पर्य कहने का नहीं है, पर कहने का अर्थ है कि विचार करना चाहो तो भले ही कर लो, आप लोग योग्यता क्षमता है तो कर्म उपासना के संबंध में, बल्कि बिना विचार किए भी यदि गुरु वाक्य पर विश्वास करके उस अनुष्ठान को कर लोगे तो आपको फल सिद्धि तो हो ही जाएगी। अब आखिर विचार करके भी अंत में फिर उस अनुष्ठान को ही करना होगा, और अनुष्ठान करने से ही फल सिद्धि होगी, अनुष्ठान नहीं करोगे तो फल तो मिलने वाला नहीं, केवल विचार से तो फल मिलेगा नहीं। अब वो अनुष्ठान ही तो करना है, आप शास्त्रों में इधर उधर भटक करके फिर देख करके अपना निर्णय करके फिर अनुष्ठान करो, या फिर जिन्होंने पहले शास्त्र के तात्पर्य को अर्थ को समझ लिया है उन पर विश्वास करके वो जैसा कहें वैसा करके अनुष्ठान कर लो, फल प्राप्त हो जाएगा। तो किसी कवि ने एक बहुत अच्छा कहा कि ग्रंथ पंत ढिंढोर के फिर कहोगे राम, सो तुलसी पहले कहो तिन से सरियो काम। कहते हैं कि सारे मत मतांतरों में दौड़ भिटक करके ग्रंथों को पढ़ करके और आखिर में तो तुम आओगे कि भगवान का नाम ही चित्त शुद्धि का सुगम साधन है, कल्याण का साधन है, और फिर भगवान का नाम लोगे तो नहीं। वो तुलसी ने रज्जब का है, सो रज्जब पहले कहो तिन से सरियो काम। तो रज्जब कहते हैं कि वो राम मैंने पहले ही कहना शुरू कर दिया, गुरुजी ने बताया और वो नाम मैंने पहले ही अनुष्ठान शुरू कर दिया, अब सारे शास्त्रों को ढूंढ करके फिर मैं निर्णय करता कि नाम ही एक श्रेष्ठ साधन है, ये तो वो बात हो गई। और एक गुरु पर विश्वास करके उसी समय मैंने साधन का अनुष्ठान शुरू कर दिया, नाम साधना में लग गया, तो लाभ में कौन रहा बताइए। पहले तो सब ग्रंथों में मत्थापच्छी करो और फिर अपना डिसीजन लो और फिर उसे साधन को करो, तब जाकर के फल मिलेगा। उससे तो कितना अच्छा है कि माथापच्ची करने वालों ने कर ली, अब उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो हमको बता दिया, हम उसके अनुसार चले, हमें तो फल सिद्धि तो चाहिए थी। इसलिए यहां कहते हैं कि अगर कोई माथापच्ची करना चाहता शास्त्रों में जाल में फंसना चाहता तो फंसे, मना कौन करता है। क्रियते या विचार कुत क्रियते, अरे भाई ग्रंथ कर्त्री भी वेद वाक्य विचार है, ये ग्रंथों को लिखने वाले जो लोग हैं फिर इन्होंने वेद विचार क्यों किया, विचार की जरूरत ही नहीं, तो जो निर्णय दिया वो भी तो ग्रंथों को देख करके ही तो निर्णय दिया है ना, मनमाना निर्णय तो है नहीं, उन्होंने भी विचार किया होगा, सारी जगह से पढ़ा होगा, फिर उसका निचोड़ निकाला होगा, तो उन्होंने विचार क्यों किया। कहते स्वस्व बुद्धि परितोषाय एव क्रियते, उन्होंने विचार इसलिए किया कि वो जो अपने बुद्धि को ज्यादा अच्छी मानते थे, या अथवा दूसरा दृष्टिकोण हो सकता है कि हम विचार करके दूसरों के लिए सुगमता कर दें। भागवत में नहीं आया, कल ही तो सुना रहा था शाम के प्रवचन में, व्यास जी महाराज ने यही तो किया, अपने बुद्धि का समाज के लिए यही तो किया कि चारों वेदों का विभाजन कर दूं ताकि लोगों को सुविधा हो जाएगी, जो अध्ययन नहीं कर पाते चार वेद वो तीन कर लें, दो कर लें, एक कर लें, चतुर्वेदी हो जाए, कोई त्रिवेदी हो, कोई द्विवेदी हो, कोई वेदी हो, ठीक है विभाजन कर दूं। बोले फिर भी नहीं कल्याण कर नहीं कर पाएंगे तो फिर लोगों की सुविधा के लिए सोचा, वेद तो सारे मैंने पढ़े हैं और वेद क्या कहना चाहता उस अर्थ को मैं जानता हूं, अब आने वाले लोग तो सारे वेद पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, उनकी अधिकारिता भी नहीं होगी, यज्ञ क्या हो शिका सूत्र आदि भी नहीं होंगे, वर्णिक नहीं होंगे, कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाएगी, तो बहुत अच्छा है कि उनके लिए उस सारे ज्ञान को लौकिक संस्कृत में महाभारत के रूप में रख दूं। अब ये मेहनत किसने किया, व्यास जी महाराज ने किया, तो क्या वो अपने ही लिए कर रहे हैं, ठीक है स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा वाली बात हो सकती है, उनको उसी में आनंद आ रहा हो, विचार करने में आनंद आ रहा हो, लेकिन हम लोगों के लिए तो बड़ी सुविधा पैदा कर दी, फिर पुराण बना दिए, फिर भागवत बना दिए। तो इस प्रकार से जो ग्रंथ करता है लोग हैं, बहुवचन का प्रयोग है, वाहिद वाक्यों का विचार क्यों किया है? इसलिए किया है कि स्व बुद्धि परितोषाय यव क्रियते, अपने अपने बुद्धि के संतुष्टि के लिए उन्होंने ऐसा किया है। उनको यह था, पहली चीज तो यह है कि अपने बुद्धि में संतुष्टि हो जाए कि जो मैं कर रहा हूं ये सही है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। अपने बुद्धि से देख करके और फिर अपने कर्म के प्रति उन्होंने दृढ़ता से प्रवृत्ति की है। अथवा यह भी हो सकता है कि अपने अपनी बुद्धि से परिश्रम मेहनत करके लोक कल्याण के हित के लिए उन्होंने कर दिया, दूसरों के हित के लिए व्यासिन जैसे किया है। इस प्रकार से सर्वथा निषेध नहीं है कि शास्त्र का विचार, कर्म उपासना संबंधी जितने भी मंत्र हैं, शास्त्र हैं, उनका विचार करना ही नहीं चाहिए, यह कहने का अर्थ हमारा नहीं है। पर यह कहना है कि विचार नहीं भी करोगे चलेगा, गुरु से मान करके विश्वास करके अनुष्ठान कर लो, तुम्हारा अपना काम बन जाएगा, यह कहने का तात्पर्य है। इसलिए न अनुष्ठान सिद्धये इति आह। वो जो शास्त्रकर्ता लोग शास्त्रों में इन मंत्रों के संबंध में विचार करते हैं, किस कर्म को किस विधि आदि से करना, ये सारा जो विचार किया है वो बुद्धि के परितोष के लिए ही किया है, न अनुष्ठान सिद्धये, अनुष्ठान की सिद्धि के लिए नहीं किया है। अनुष्ठान की सिद्धि तो आप बताई अनुसार करके भी कर सकते हैं, उसके लिए जानने की जरूरत नहीं है, बताए के का अनुसरण करके वो जैसे कहे श्रद्धा पूर्वक करो तो भी किया जा सकता है, क्योंकि कर्म और उपासना ये तो आपके अधीन है, कर्तव्य तंत्र होती है, इसलिए आप भावना करके उस अनुष्ठान को कर लो, फल की सिद्धि हो जाएगी। वही बात अगले मंत्र में बोल रहे हैं। वेद वाक्याने निर्णयतुम इच्छन मीमांस, उच्चारण करना है क्या? ठीक है। वेद वाक्याने निर्णयतो मिच्छन् मीमांसताम् जनः आप्तोपदेशमात्रेण यनुष्ठानं हि संभवेत् वेदवाक्यानि निर्णेतो मिच्छन् मीमांसताम् जनः आप्तोपदेशमात्रेण यानुष्ठानं हि संभवेत् वेदवाक्यानि निर्णेतुम् इच्छन् मीमांसताम् जनः। वेद वाक्यों का निर्णय करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य मीमांसा करे, वेद वाक्यों का निर्णय करने की इच्छा रखने वाले, जिनको यह है कि हम जिन्होंने निर्णय किया उन पर विश्वास नहीं कर सकते, हम तो सुनी हुई पर विश्वास नहीं करते, आंखों देखी पर विश्वास करते हैं। कोई इस तरह का व्यक्ति हो तो आंखों से देख ले भाई, बात तो वही निकलेगी जो आपने सुना था। इसलिए कि जो आप तो पुरुष हैं, जो ऋषि लोग हुए हैं, वो ऋषि लोगों के लिए ऋषि इसलिए बोलते हैं कि मंत्र दृष्टार है ऋषय, उन्होंने अच्छी प्रकार से वेद के सारे मंत्रों को देखा है और एक विशेष अंतकरण की शुद्धि की अवस्था में उन मंत्रों के अर्थों को जान करके उनका तात्पर्य निकाला है। इसलिए मनीषियों ने जो उस समय निर्णय कर दिया है आज तक उनको कोई बाधित नहीं कर सकता, असत्य सिद्ध नहीं कर सकता है। आप ब्रह्मसूत्र पढ़े हैं, आप लोगों ने गुणोपसंहार में कितना उहापोह हुआ है इधर उधर, लेकिन जो अर्थ है जो निर्णय है वो का वही रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो जिन्होंने वो मेहनत कर ली है उस पर विश्वास नहीं कर सकते कोई व्यक्ति, जिनके मन में खुजली चल रही हो, बुद्धि में खुजली चल रही हो कि नहीं नहीं मैं तो खुद ही देख करके ही अपना निर्णय करूंगा, भाई देख ले। कोई कहता है कि हमको शीशे में मुंह दिखता है, कोई कहता है कि हमको पानी में मुंह दिखता है, एक बोला नहीं मुझे तो काले तवे में भी मुंह दिखता है, तो देख ले। हाँ? काले में मुंह कैसे देखेगा तुम्हें, पर दिखता है तो देख ले, कौन मना करता है। तो अपने बुद्धि को परीक्षण करना चाहता है तो कोई कर ले, कौन मना करता है। यहां कहते वेद वाक्यानि निर्णय तुम इच्छन, वेद वाक्यों को निर्णय करने की जो इच्छा रखने वाला जन है, मनुष्य है, मीमांसताम कुरियात ऊपर से लगा लो, वो मीमांसा करे, उनको कौन मना करता हो, विचार करे भले ही, लेकिन फिर भी क्या होगा, आप तो उपदेश मात्रेण ही अनुष्ठानम संभवेत। जब जिसके संबंध में आपने शास्त्रों को देख करके निर्णय किया है, वो कर्म उपासना का जो अनुष्ठान है आप निर्णय करो, ठीक कर लो, उससे वैसे कर लो, लेकिन वास्तविकता यही होगी कि आप तो उपदेश मात्रेण अनुष्ठानम संभवेत। जो अनुष्ठान तुम इतना पापड़ बेल करके करोगे, वो अनुष्ठान तो आप तो पुरुष के उपदेश से ही सुन करके आप कर सकते थे, उसके लिए शास्त्र में इतना मत्था खपाने की जरूरत नहीं थी। वो तो आप तो पुरुष जो है, जिन्होंने वेदों का मंत्रों का निर्णय किया है, उनके द्वारा जो निश्चय है, वो जो जैसा उपदेश दिया है उसको सुन करके उसके द्वारा अनुष्ठानम संभवेत, उस अनुष्ठान को आप कर सकते हैं, जिस अनुष्ठान को लोग सारे शास्त्र ढूंढ करके फिर निर्णय करेंगे, किया जा सकता है। इसलिए वहां पर विचार की अनिवार्यता नहीं है, यूं कहो कि कैसे क्या करना चाहिए, उसकी अनिवार्यता नहीं है, वह अनिवार्यता है आचार्य उपदेश की, आप्त पुरुष के उपदेश की, गुरु के उपदेश की अनिवार्यता है, वो जैसा कहेंगे वैसा श्रद्धा से कर लेना चाहिए। इसलिए हमारा कहना था कि कर्म उपासना जो होती है वहां विचार की आवश्यकता नहीं है, वहां पर केवल उपदेश की आवश्यकता है, जैसा सुना है उपदेश को सुन करके श्रद्धा से उसको कर लेना चाहिए। ननो ब्रह्मोपासनवद ब्रह्म साक्षात्कार से उपदेश मात्रादेव सिद्धि किन्न स्यादितिया है। अब ये प्रश्न खड़ा कि ठीक है जी, आप कहते हो कि कर्म है उपासना है ये उपदेश मात्र से ही हो जाएंगे, उसके लिए विचार की जरूरत ही नहीं है, तो चलो फिर तो ऐसा है तो ब्रह्मोपासनवत ब्रह्म की उपासना की तरह ही ब्रह्म साक्षात्कारस्यापि उपदेश मात्रादेव सिद्धि। ब्रह्म का जो साक्षात्कार है वो ब्रह्म के साक्षात्कार की भी जो सिद्धि है वो उपदेश मात्र से ही हो जाएगी। ये प्रश्न खड़ा किया कि जैसे वो अनुष्ठान एक उपदेश मात्र से ही किया जा सकता है उपासना, ऐसे ब्रह्म साक्षात्कार भी गुरु के उपदेश मात्र से ही सिद्ध हो सकता है ना, किन्न स्याद सिद्ध क्यों नहीं हो जाता है, ऐसी आशंका होने पर उसका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न अच्छा उठाया है कि ज्ञान में भी तो श्रद्धा की ही प्रधानता बताते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा रखता है वो श्रद्धा वाले को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धास्व सौम्य, अरे तुम श्रद्धा करो शास्त्र ने कहा, तो वहां श्रद्धा से मान लिया और उपदेश दिया गुरु ने कि ऐसा है, बस मान लिया, तो फिर वहां पर भी विचार की मीमांसा की कहां जरूरत है, श्रोतव्य और फिर मंतव्य की कहां आवश्यकता है, मनन की कहां जरूरत है, सुन लिया और ज्ञान हो गया, ऐसा क्यों नहीं हो जाता। तब यहां पर उसका उत्तर दे रहे हैं कि देखो ज्ञान में मात्र उपदेश काम नहीं करेगा, उपासना में उपदेश काम करेगा, तहार वैसा कर लो आपको फल मिल जाएगा। राजा अंग को संतान नहीं थी, और ब्राह्मणों ने कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ करो, पुत्र प्राप्त होगा, तो अनुष्ठान किया तो पुत्र की प्राप्ति हो गई, संतान थी ही नहीं। शास्त्र ने बता दिया दिलीप को संतान नहीं थी, महारानी ने गौ की सेवा किया नंदिनी की, संतान आ गई। कहा ऐसा करो हो जाएगा, किसी को रोग निवृत्ति करनी है कह दिया महामृत्युंजय का जप करो। अब क्यों क्या कैसे है, कहां का मंत्र है, किसमें लिखा है कि इससे रोग की निवृत्ति हो ही जाएगी, हमको विश्वास नहीं है। तो विश्वास नहीं तो शास्त्र उठा करके पढ़ लो, परंतु करना तो आपको जप ही पड़ेगा। तुम पढ़ करके करोगे तो भी जप करोगे, और कहने से करोगे तो भी जप करोगे, और जब जप करते हो तो सिद्धि तो होनी होनी, उसका फल तो आएगा ही आएगा। तो जिस प्रकार वहां से वहां पर विचार के बिना भी हो सकता था, ऐसे ज्ञान भी ऐसे ही हो जावे, एक बार बता दिया बस ज्ञान सिद्धि हो जाए, ऐसा क्यों नहीं होता। उत्तर दे रहे, ब्रह्म साक्षात कृतेष्ट्वैवाम् विचारेण विना नृणाम् आप्तोपदेश मात्रेण न संभवति कुत्रचेत्। ब्रह्म साक्षात कृतिस्त्वैवाम् विचारेण विना नृणाम् आप्तोपदेशमात्रेण न संभवति कुत्रचित्। ब्रह्म साक्षात कृति ही तो एवं विचारेण विना नृणाम आप्तोपदेश मात्रेण कुत्रचित न संभवति। कहते ब्रह्म साक्षात कृति जो है परमात्मा का साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात कृति क्या हो गई, ब्रह्मात्मना अनुभव, ब्रह्म मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है, ये अनुभव, यही तो फल होगा ना। कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो जिसको चाहने के लिए पाने के लिए करते हैं उसकी प्राप्ति होने पर ही तो सिद्धि कही जाएगी। पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो उसकी सिद्धि होगी, पुत्र की प्राप्ति। इसी प्रकार से यहां पर कहते हैं कि ब्रह्म साक्षात कर्तृत्व एवं विचारेण बिना नृणाम आप्तोपदेश मात्रेण न संभवती। विचार के बिना मनुष्यों को इस प्रकार से ब्रह्म साक्षात कर्ति आप्तोपदेश मात्र के बिना संभव नहीं है, आप्तोपदेश मात्र से संभव नहीं है। केवल गुरुजी ने बता दिया कि तत्त्वमसि, यदि इतना कह देने मात्र से ही आत्म साक्षात्कार हो जाता तो छांदोग्य उपनिषद में महर्षि उद्दालक को श्वेत केतु के प्रति 9 बार उपदेश नहीं करना पड़ता। यदि आप तो उपदेश मात्र से ही ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता, कहने मात्र से ही हो जाता, बिना विचार के, विचार की आवश्यकता न होती, तो 1 बार उपदेश आया कि तत्त्वमसि, इतने में उसकी तो समाधि लग जानी चाहिए थी ना। 9 बार उपदेश क्यों आया है, इसलिए उपदेश करना पड़ा कि वहां बार बार अरे तत्त्वम असि यह कैसे है, वह तुम कैसे हो, इसमें जो शंका होती है कि वह मैं कैसे हो सकता हूं, इन शंकाओं की जो निवृत्ति है वो तो विचार के बिना तो संभव नहीं है। विचार की जरूरत है वहां पर, इसलिए मनुष्यों को नृणाम विचारेण बिना एवं आत्म ब्रह्म साक्षात कृति आप्तोपदेश मात्रेण कुत्रचित न संभवती। मनुष्यों को विचार के बिना एवं मन इस प्रकार से, किस प्रकार, जैसे उपासना में एक आप्त पुरुष के उपदेश मात्र से ही अनुष्ठान करके फल सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार रूपी जो सिद्धि है वहां पुत्र आदि की प्राप्ति रूप सिद्धि है और यहां पर ब्रह्म साक्षात्कार रूपी सिद्धि है। ब्रह्मात्मना जो अनुभूति है कि ब्रह्म मेरे अंतरात्मा है, ये अनुभव रूपी सिद्धि केवल आप तो उपदेश मात्रेण न संभवती, मात्र आप तो पुरुष के द्वारा उपदेश किए जाने से संभव नहीं है। गुरु की जरूरत है, लेकिन गुरु ने बता दिया इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसका अर्थ यह नहीं कि वो गुरु की जरूरत नहीं है, नहीं तो श्रुति विरोध आ जाएगा और अनुभव विरोध आ जाएगा। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्त्य कृतय कृतेन। वह देखो विचार है वहां पर, और विचार के साथ साथ गुरु उपदेश की आवश्यकता है। लोगों की परीक्षा करना, ये परीक्षा करना क्या है? विचार नहीं है तो क्या है? गुण दोष नित्य अनित्यता का देख करके ही तो, यही तो विचार है। जो भी कर्मचित है, कर्म से चयन किए गए हैं, कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले हैं, उस सारी दुनिया को अच्छी तरह से देख लो, समझ में आ जाएगी दुनिया क्या है। जो भी संयोग हो रहा है वो निरंतर वियोग में जा रहा है, जिसको पकड़ा है वो धोखा दे गया, जिसको पकड़ा उसी ने धोखा दिया है। बिल्कुल ये समझो कि हम धोखे की गाड़ी पर ही बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? शरीर, और शरीर को लेकर के सबको पकड़ा है। किसी को नौकर धोखा देता है, किसी को पार्टनर धोखा देता है, किसी को परिवार भाई धोखा देता है, कहीं तो पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं। पर ये सारा धोखा किसके पीछे है? इस शरीर के पीछे। सबसे अधिक धोखा तो शरीर दे रहा है कि नहीं? परीक्षे लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात। अरे सभी धोखा देने हैं वाले हैं तो मैं किसमें राग करूं, किसमें चिपकूं? जिससे चिपकना चाहता हूं वो तो खिसक जाता है, आगे बढ़ जाता है, सदैव एक जैसा रहता ही नहीं है। तो क्या होना चाहिए? बोले राग की जगह वैराग होना चाहिए। निर्वेद मायात, वैराग्य को प्राप्त कर ले। क्यों? तब वहां एक अच्छी बात कही है, निर्वेद मायात नास्ति अकृत कृतेन। जो कृत है, किया हुआ है, कार्य है, उसके द्वारा अकृत स्वरूप जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। ये विचार तो है, ये अच्छी तरह से समझ लो कि कार्य से, कृत से अकृत स्वरूप जो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। कृत से जो प्राप्त होगा ना, वो तो कृत ही होगा। कर्म उपासना से जिसकी प्राप्ति होगी वो तो नाशवान पदार्थ ही होगा, अंत में धोखे से धोखा ही होगा। इसलिए जो अकृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति है वो करने से नहीं होगी, वो जानने से होगी। तो इतना विचार तो करेगा कि नहीं व्यक्ति, इतना तो मनन चिंतन करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद जो अकृत तत्व है उसको जानने के लिए कहा, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। उसको जानने के लिए गुरु के भी मुख जाए, पर गुरु भी कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय मर्मनिष्ठम, श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान निधि होना चाहिए। साधक भी उसी श्रेणी का होना चाहिए और गुरु भी उसी स्तर का होना चाहिए। तब गुरु ने उपदेश दिया तत्त्वमसि महावाक्य का, वह तुम हो, वह तुम हो। और वहां जब तुम्हें श्रवण मनन निध्यासन की आवश्यकता पड़ती है तो करो। असत्वापादक, अभानापादक, जो आवरण है उसकी निवृत्ति के लिए बार 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 अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, वहां विचार की आवश्यकता है। इसलिए उसका विरोध नहीं है, कहते हैं केवल उपदेश दे दिया, बता दिया और जैसे ब्रह्म की उपासना किया वैसे ही ज्ञान हो जाए, ऐसे ज्ञान नहीं होगा उपदेश मात्र से। आप तो उपदेश मात्र न संभवती, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता, कुत्रचित कहीं पर भी आप पुरुष के उपदेश मात्र से ज्ञान नहीं होता है। वो ब्रह्म साक्षात्कार तो विचार से होगा, विचारेण बिना न संभवती। उपदेश की जरूरत है, इतना जरूरत है, लेकिन उपदेश के साथ साथ स्वयं को विचार करना पड़ेगा, अपने विवेक की दृष्टि खुलनी चाहिए। यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्रम तस्य करोति किम्। लोचनाभ्याम विहनस्य दर्पण किम करिष्यति। जिसकी स्वयं की दृष्टि न हो, आंख बंद है, नेत्र है ही नहीं, और उसके सामने सुंदर दर्पण लगा दिया जाए तो क्या उसको शक्ल दिखा देगा? देखने के लिए तो खुद की आंखें ही चाहिए। दर्पण का काम है आपको आपकी शक्ल दिखाना, लेकिन देखने के लिए तो अपनी दृष्टि चाहिए, वो तो प्रावर्तित कर पाएगा आपकी शक्ल को। इसलिए यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्रम तस्य करोति किम्। जिस व्यक्ति को अपनी प्रज्ञा नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका क्या कर लेगा? शास्त्र तो एक दर्पण है, इसलिए उस शास्त्र दर्पण को गुरु आपके सामने दिखा देगा कि लो देखो तुम्हारा स्वरूप जो है ब्रह्म है। गुरु उस शास्त्र को सामने रखेगा कि तुम्हारा स्वरूप गुरु है, इतना तो उपदेश गुरु करेगा, लेकिन मेरा स्वरूप ब्रह्म है ये जानने के लिए विवेक दृष्टि तो अपने को खोदनी पड़ेगी, विचार तो अपने को करना पड़ेगा, बुद्धि तो अपने काम में लेनी पड़ेगी। गुरु का काम उपदेश देने का होता है, वही बात बताइए यहां पर। साक्षात कृतेस्तु एवं विचारेण बिना निर्णाम आप तो उपदेश मात्रेण न संभवति कुत्रचित। कहीं पर भी विचार के बिना केवल आप तो पुरुष के उपदेश मात्र से ब्रह्म साक्षात कृति वैसे नहीं हो जाती है जैसे उपासना में फल सिद्धि होती है। नहीं, यहां तो विचार की जरूरत है, दोनों ही चाहिए, उपदेश भी चाहिए और विचार भी चाहिए। आप तो उपदेश मात्रेण उपासना अनुष्ठानोपयोगी प्रोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते। अप्रोक्ष ज्ञानम तो विचार मंत्रेण न जायते इति उक्तम। बहुत सुंदर बात स्पष्ट की है कि आप तो उपदेश मात्रेण उपासना अनुष्ठानोपयोगी प्रोक्षम ज्ञानम उत्पद्यते। हां ठीक है, वहां तक आपको विचार न हो तो भी चलेगा। कहां तक? प्रोक्ष ज्ञान तक। प्रोक्ष ज्ञान तो विचार के बिना भी हो सकता है, वहां तो श्रद्धा की जरूरत है, वहां श्रद्धा प्रधान है। आपने गुरु पर श्रद्धा किया, आप तो उपदेश मात्रेण उपासना अनुष्ठानों उपयोगी, उपासना के अनुष्ठान में उपयोगी जो प्रोक्ष ज्ञान है वो आप्त पुरुष के उपदेश मात्र से प्राप्त हो जाएगा। प्रोक्ष ज्ञान हुए बिना तो उपासना भी संभव नहीं है। प्रोक्ष ज्ञान हुए बिना उपासना संभव नहीं है, और प्रोक्ष ज्ञान भी आप्त पुरुष के बिना हो नहीं सकता। ब्रह्म की उपासना करते हैं, अन्नम ब्रह्म मनोब्रह्म उपासना आती है ना, तो ये जो ब्रह्म की भावना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, ये भावना तभी है जब पहले ब्रह्म को स्वीकार किया हमने। ये ब्रह्म है ठीक है, अब कहीं ये ब्रह्म है लोग कहने लग जाए ब्रह्म नहीं है तुम्हारा भ्रम है, तो क्या करोगे बताओ? तब वहां पर आप्त पुरुष के उपदेश की जरूरत है कि आप्त पुरुषों ने जिन्होंने शास्त्र को समझा है उनके वाक्य हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप है। इन वाक्यों के द्वारा पहले परोक्ष ज्ञान हुआ है कि ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है। अब ये शास्त्र से महापुरुषों के द्वारा सुना है, शास्त्र वाक्यों को गुरुजनों से सुना, आप्त पुरुषों से सुना है, तो पहले उसका परोक्ष ज्ञान हुआ, उसके बाद में अब मन में ब्रह्म की भावना किया कि अन्न में ब्रह्म की भावना किया। उपनिषदों में तो बहुत सारी इस प्रकार की उपासनाएं आती है, तो पहले ब्रह्म को स्वीकार तो किया ना, ब्रह्म को स्वीकार करना ही तो ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान है। और वो जो ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान हुआ है आपको, वो गुरुजनों से शास्त्र वाक्यों को सुनने से हुआ। आप तो पुरुषों ने शास्त्र वाक्य बताए, कहा तब उन पर विश्वास किया है, अब शास्त्र में भी विश्वास हुआ और आप तो पुरुषों पर भी विश्वास हुआ, तब फिर उन पर विश्वास होने के कारण ब्रह्म है ये भी हमको विश्वास हुआ। कहते हैं ईश्वर पर की कृपा, गुरु की कृपा, शास्त्र की कृपा, ये तीनों कृपा कब होगी? जब तीनों पर हम विश्वास करते हैं। गुरु ने कहा उस पर विश्वास किया, गुरु भी अपना ज्ञान नहीं थोप रहे, वो शास्त्र बोल रहे हैं, तो जो शास्त्र गुरु ने बोला है उसे शास्त्र पर विश्वास, उस पर श्रद्धा, और जो जिसके लिए उन्होंने कहा है उस तत्व पर श्रद्धा, क्योंकि अतीन्द्रिय है ब्रह्म, हमारी इंद्रियों का विषय तो है नहीं, सुनकर के ही जाना है, तो उसे ईश्वर पर भी, उसे ब्रह्म पर भी, माया शक्ति विशिष्ट मान लो तो भी उस पर विश्वास श्रद्धा। तो जिस व्यक्ति ने इस गुरु पर, शास्त्र पर और ईश्वर पर श्रद्धा की है, तब जाकर के और श्रद्धा से फिर उसके अस्तित्व को स्वीकार करता है, तब ग्रहण करता है, तो इतने मात्र से ही ब्रह्म का बोध तो हो गया। श्रद्धा करने से वो आप्त पुरुष के द्वारा वेद वाक्य सुनने को मिला और ब्रह्म है इतना ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान होने के बाद फिर उस ब्रह्म की उपासना किया जाता है, परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान के बिना उपासना भी सिद्ध नहीं हो सकती है। पहले परोक्ष ज्ञान होगा, उपासना होगी। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो वाक्य आया है ये सब ब्रह्म है, ये भी तो सुन करके ही जाना है। तज्जलान शांति उपासित है, ये उपासना है। क्यों है? बोले वही तज जल और अन्न, जन्म भी उसी से है, जन्म लेने वाला भी वही है, और जन्म लेने वाला और जिसमें लय होता वो भी वही है, और अनमाने चेष्टा जिसमें हो रही है वो भी वही है। इसलिए जन्म लेने वाला, चेष्टा करने वाला और लय स्थान वही तत्व होने के कारण ये क्या सारा जगत क्या है, ये ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ऐसी भावना करो, ऐसी उपासना करो, क्योंकि वो तत्व ही तत ही इस संपूर्ण दृश्य मात्र जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इसलिए ब्रह्म की भावना करो। अब ये वाक्य सुना है गुरुजनों से, तब तो उपासना करेंगे ना, और उपासना करके फिर जिसकी उपासना किया है चित्त शुद्ध होगा, वेदांत में उसका विचार करके कि ये सब जब वही है तो मैं कौन हूं, मैं अलग से कहां से आ गया, मेरा भी तो स्वरूप वही है, तो महावाक्य आदि के उपदेश से विचार करते जाओ तो आत्मा साक्षात्कार होगा। इस प्रकार से आप तो उपदेश मात्रेण उपासना अनुष्ठान उपयोगी परोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते, आप्त पुरुष के उपदेश मात्र से जो उपासना अनुष्ठान में उपयोगी है परोक्ष ज्ञान, वो परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। अपरोक्ष ज्ञानम तो विचार मंत्रेण न जायते, मगर तू किंतु किंतु जो अपरोक्ष ज्ञान है वो अपरोक्ष ज्ञान विचार के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता है। परोक्ष ज्ञान तो उपदेश मात्र से हो जाएगा, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान के लिए तो विचार करना ही पड़ेगा। जो संशय और विप्रय दोष होते हैं, संशय विप्रय आदि दोष की निवृत्ति के लिए विचार करना ही पड़ेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन ये अंतरंग साधन तो उसको करना ही पड़ेगा। इसलिए अप्रोक्ष ज्ञानम तो विचार मंत्रेण न जायते, जो अप्रोक्ष ज्ञान है वो तो विचार के बिना संभव नहीं है। तत्र कारणम आव है, क्यों नहीं होता है अप्रोक्ष ज्ञान विचार के बिना, उसका कारण बताया है अगले श्लोक में। करने एक मिनट में उच्चारण कर लो। प्रोक्ष ज्ञान माश्रद्धा प्रोक्ष ज्ञान माश्रद्धा प्रतिबध्नाति नेतरत् अविचारो परोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबंधकः। प्रोक्ष ज्ञानम अश्रद्धा प्रतिबध्नाति न इतरत्, अविचारो अप्रोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबंधकः। यहां कहते हैं कि देखो, प्रोक्ष ज्ञान में प्रतिबंध कौन है और अप्रोक्ष ज्ञान में प्रतिबंध कौन है? प्रतिबंध ही तो हटाना है। आप्त पुरुष ने ब्रह्म की का ज्ञान दिया और हमको प्रोक्ष ज्ञान हो गया, पर मान लो जिससे हमने सुना कि ब्रह्म है और सुनाने वाले ने कहा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वेद में लिखा है और वेदवाणी सत्य है, तुम मान लो ये सारा जगत ब्रह्म रूप है, बहुत बड़ा लाभ होगा, राग द्वेष मिटेगा। पर सुनने वाला इतना बड़ा बुद्धिमान है, वह कहता कैसे मान लूं आपकी? बोले मान लो भाई, शास्त्र में लिखा है। वह कहने लग गया कि शास्त्र भी तो किसी इंसान ने लिखा है, बुद्धि वाले ने लिखा है, वो बुद्धू थोड़े होगा, जड़ नहीं होगा, बुद्धि वाले नहीं तो शास्त्र लिखे है ना। तो जैसे पहले लिखने वाला शास्त्र लिखने वाला था, वो एक इंसान था, मैं भी एक इंसान हूं, उसके पास बुद्धि थी तो मेरे पास भी बुद्धि है, उसने विचार करके शास्त्र को पढ़ के कहा तो मैं भी विचार करके पढ़ करके मानूंगा, जची तो मानू, मेरी बुद्धि न माने तो न मानू। हो गया, इसका अर्थ क्या हुआ? वो न तो आप तो पुरुष पर श्रद्धा है और न वेद पर श्रद्धा है। बताइए उस व्यक्ति को ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान कैसे होगा? तो परोक्ष ज्ञान में जो प्रतिबंध होता है वो है अश्रद्धा। यदि अश्रद्धा हट गई तो परमात्मा का परोक्ष ज्ञान तो हो ही जाएगा। ये बात कहा है, परोक्ष ज्ञानम अश्रद्धा प्रतिबंधनाती, परोक्ष ज्ञान को अश्रद्धा ही प्रतिबंधित करती है, परोक्ष ज्ञान में वही रुकावट खड़ी करती है अश्रद्धा। श्रद्धा नहीं तो ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान ही नहीं होगा, मानेगा ही नहीं तो होगा कैसे? वो कहते ना कि कोई व्यक्ति खुद समझे नहीं और दूसरे की माने नहीं तो उसका क्या उपाय है भाई? वही अश्रद्धा कारण है। अविचारो अप्रोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबंधक, लेकिन जो अप्रोक्ष ज्ञान है उस अप्रोक्ष में ज्ञान में प्रतिबंधक है अविचार है। विचार न करोगे तो अप्रोक्ष ज्ञान नहीं होगा, अविचार प्रतिबंधक है अप्रोक्ष ज्ञान में और अश्रद्धा प्रतिबंधक है परोक्ष ज्ञान में। कल करेंगे थोड़ा इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।